ओम शांति। मैं निवेदन करूंगी, आप सभी भी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी मीडिया कर्मियों का हमारे तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली जरूर बजाएं। इन गर्मी के दिनों में आप सभी ट्रैवल करके दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, कुछ समय निकाल कर आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि यही समय की मांग है। दुनिया में चारों ओर इतना टेंशन है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं मानव कितना दुखी, अशांत, परेशान, चिंतित होता ही जा रहा है। और आप लोगों की सेवा ही ऐसी है जो हर परिस्थिति के सामने आप पहुंचते हो और उनकी रिपोर्ट भी लेते हो और समाज को दिखाते हो अपने मीडिया के माध्यमों द्वारा। लेकिन कभी अपने लिए नहीं सोचा होगा कि दुनिया में तो ये सब कुछ हो रहा है और इसका परिणाम, इसका कारण क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। और शक्तियां तो बहुत है, कितने प्रकार के पावर्स है दुनिया में, मनी पावर, मैन पावर, मटेरियल पावर, मसल पावर, वेपन पावर, न जाने क्या क्या पावर्स है संसार में। और मनुष्य अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करता है वो शक्तियों को पाकर। लेकिन ये सब शक्तियाँ विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। आज यही शक्तियाँ जो हम यूज़ करते हैं ये हमको भी ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक शक्ति होगी तो आप कई समस्याओं का सामना सहज कर सकेंगे। तो केवल न्यूज़ नहीं देनी है, लेकिन आपके सामने भी अगर ये समस्याएं आए तो आप उसे कैसे झेलेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे, वो ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, जिसको ही हम मेडिटेशन कहते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन क्या है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है वो क्या है और कैसे हम करते हैं, उसके विषय में आज आपका सेकेंड सेशन है। कल आप सभी को फर्स्ट सेशन मिला, स्वयं की पहचान आपको मिली, आप कौन है ये पता चला, और आज इस समय ईश्वर कौन है उसकी पहचान देंगे। क्योंकि योग का अगर हम सही अर्थ ले तो कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, युज शब्द से निकला है यह शब्द योग, जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। अब वो योग कई प्रकार का होता है, लेकिन जहाँ जोड़ है वो योग है, जहाँ अलग होते हैं वो वियोग है। तो योग और वियोग ये जीवन के दो पहलू हैं। आप जहाँ से आए वहाँ से वियोग हुआ और यहाँ आए यहाँ से योग हुआ। तो वियोग और योग तो ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। अवश्य हम हर पल ये अनुभव करते हैं, और अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल टर्म्स में लें तो योग का बहुत ऊंचा अर्थ है, तो साधारणतः योग का मतलब होता है कोई भी मिलन, इसको कम्युनियन कह दीजिए, रिलेशनशिप कह दीजिए, रिमेम्बरेंस भी कह दीजिए। आप किसी को बहुत याद करते हैं, बहुत उस समय आपकी याद तीव्र है उस व्यक्ति की, और उसी समय वो पहुंच जाता है। मान लो आप कहेंगे क्या योग था मेरा, आपको मैंने अभी अभी याद किया और आप आ गए। तो याद भी एक योग ही है, क्योंकि उससे मिलन होता है, मन से मिलन होता है। तो कई रूपों से हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रयोग में भी योग है, सहयोग में भी योग है, संयोग में भी योग है। आप कोई बात सोचते हैं और वो बात घट जाती हो जाती है, आपने सोचा और हो गई, आप कहेंगे क्या संयोग था, हमने सोचा और हो गया। तो ये भी एक योग है, लेकिन हम इसको और ऊंचे स्वरूप में देखेंगे। आत्मा का योग परमात्मा के साथ, ये सर्वोच्च योग है, सर्वोपरि योग है। वैसे देखा जाए कि हर एक व्यक्ति योगी है, हर एक व्यक्ति योगी है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं, जो अपने आप को योगी समझते हैं वो हाथ उठाएं। थोड़े ही, सभी नहीं है, सभी ये नहीं है योगी। आप हो, आप योगी हो, क्योंकि जिसको भी आप याद कर रहे हैं उसके साथ योग है कि नहीं है। फिर आप चाहे व्यक्ति को याद कीजिए, कोई वस्तु को याद कीजिए, कोई वैभव को याद कीजिए, कोई घटना को याद कीजिए, कोई स्थान को याद कीजिए, मन तो सदा सोचता ही रहता है। तो जिसको आप याद कर रहे हो उसके साथ योग है कि नहीं? हम कहेंगे जरूर है। और दूसरा अनुभव ये कि जिसके साथ योग होता है उसकी अनुभूति उसी समय होती है। कोई दुखद घटना को आप याद कर रहे हो, तुरंत वो दुख की अनुभूति होने लगेगी, चाहे वो घटना कितना समय पहले घटी होगी, लेकिन आज भी उसको, उस ट्रैजिक इंसिडेंट को याद करेंगे आपको दुख की महसूसता होगी। कोई सुखद घटना को याद करेंगे उसी समय सुख की अनुभूति होगी, जबकि वो सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुस्कुराएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे क्या बात है भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो। आप कहेंगे कोई बात याद आ गई, कोई बात याद आ गई। तो वो बात याद आ गई, जैसे उस स्थिति में आप पहुंच गए और वो याद के कारण वो अनुभव उसी समय होने लगा। तो राजयोग क्या है? योगी तो हम सब है, लेकिन राजयोगी कैसे, किसको कहेंगे? जिसका योग परमात्मा के साथ हो। अब आप कहेंगे हम भगवान को तो याद करते हैं, जब जब दुख की घड़ी आती है तब ईश्वर को भी याद करते हैं, जरूर याद करते हैं। और कबीर का ये दोहा भी है, दुख में सिमरण सब करे, चाहे नास्तिक भी होगा ना तो भी अनायास मुख से निकल आएगा ओ गॉड, निकल ही आएगा, भले नास्तिक भी क्यों ना हो, ओ माय गॉड, ओ गॉड। तो भगवान तो याद आता ही है, लेकिन सुख में भी अगर सिमरण करे तो दुख भी, कबीर का के शब्द है उसके बाद, तो दुख याद करो तो दुख कभी होगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी सत्य बात है। जैसे आप बैठे हो, बाहर कितनी गर्मी है लेकिन अंदर में आपको महसूस होगा यहाँ ठंडक है। तो आपने अपने मन को कंडीशन कर दिया है भाई 24 डिग्री टेम्परेचर पर रखना, एयर कंडीशन रूम में बैठे या कहाँ भी गाड़ी में बैठे हैं, तो उस तपत से आप दूर हैं। तो अगर हमने अपने मन को भी कंडीशन कर लिया तो चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हम अपने मन में शांति की अनुभूति कर सकते हैं, अंदर में संतोष की अनुभूति कर सकते हैं सकते हैं। क्योंकि हर वक्त परमात्मा की याद है और वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो दुख में भी कर सकते हैं और सुख में तो वैसे कोई करते नहीं है, परंतु हर वक्त अगर उसकी याद हो तो दुख कभी आएगा ही नहीं, आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो मैं बहुत अशांत हूं, क्योंकि परमात्मा को सदा अपना साथी मानेंगे। इसीलिए राजयोग माना सभी योगों का राजा, सभी योगों का राजा है। जिससे पहले हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर अपने मन के भी राजा बनते हैं। हम जो सोचना चाहें वही सोचें, ऐसे नहीं कि हम नहीं सोचना चाहते और वो सोच मन में चल ही रहा है। तो मन के भी राजा, फिर सबके दिलों के भी राजा, क्योंकि आपके द्वारा जो कर्म होंगे वो भी श्रेष्ठ होंगे, तो सबका दिल भी जीत सकेंगे। और जब अगर सबका दिल जीत सको तो आप सारे विश्व को भी जीत सकते हैं, क्योंकि बाहुबल से, हथियारों के बल से किसी ने आज दुनिया को जीता नहीं है, किसी ने नहीं। सिकंदर जैसे राजा होकर गए, दुनिया को जीतने चले, लेकिन अंत में हाथ खाली जाना पड़ा। तो इसीलिए बाहुबल से, हथियारों के बल से कोई विश्व को नहीं जीत सकता है, लेकिन अगर हमारे जीवन में वैल्यूज हैं तो हम सबका दिल जीतकर विश्व को जीत सकते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाए। तो मानव देव कैसे बन सकता है, जब उस सर्वोच्च परमात्मा से हमारा योग होगा। इसीलिए राजयोग, जो सभी योगों का राजा है, जिसको गीता में भगवान ने खुद कहा, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो क्या है ये राजयोग? आत्मा का परमात्मा से योग, ये सर्वोच्च योग है। इसी को हम राजयोग कहते हैं। इट्स अ लिंक ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल। और ये योग का तरीका भी सबसे ऊंचा है। कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं हम भगवान को याद करने लिए। कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कई तरीके हैं। समझते हैं हमारा योग ईश्वर से हो जाए, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है और शॉर्टकट है। अब आप माउंट आबू आपको आना था तो आप कैसे आ गए? टैक्सी से, बस से, हाँ आ गए ना, कितना सहज, क्योंकि रोड बना हुआ है। अब पहले ये रोड नहीं था तो लोग पहाड़ों पर चढ़ करके आते थे, कितने घंटों लग जाते होंगे उनको आबू आने में। 1000 साल पहले ये दिलवाड़ा मंदिर बना, जहाँ माउंट आबू में है, पूरा मार्बल का है। कहाँ से आए मार्बल यहाँ? कोई रोड था नहीं, रोड तो अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन 1000 साल पहले ये दिलवाड़ा मंदिर था। और वो कैसे आए? हाथियों पर, घोड़ों पर, हाँ, लाद करके ले आए ये मार्बल सारे, तो पहाड़ों पर चढ़ के आए होंगे। परंतु अभी रोड है तो कौन पहाड़ों पर चढ़ करके आएगा? तो सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टकट, सहज तरीका, ये राजयोग है आत्मा का परमात्मा से मिलन का। और फिर तीसरा, प्राप्ति भी सबसे ऊंची है। आज दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य के पास समझो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान तो आवश्यकताएं है ही है, लेकिन उससे अधिक कई वैभव हो, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ ऐसे कमी महसूस होती है जीवन में, सब कुछ होते हुए भी? तो क्या कहते हैं? हाँ बहन जी, सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन बस शांति चाहिए, शांति। तो सबसे ऊंची चीज क्या है? सबसे ऊंची चीज क्या है? सब कुछ हो और शांति न हो तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है। और अगर सचमुच शांति है, चाहे झोपड़ी में रहते हैं, तो सब कुछ नहीं है फिर भी शांति है, तो वो सबसे सुखी इंसान है, वो राजा है। क्योंकि संतोष रूपी धन सबसे ऊंचा धन है। संतोष सर्व गुणों का ताज है। जिसने ये ताज धारण कर लिया वो राजा है, संतोष रूपी धन। इसीलिए सर्व प्राप्तियों में हम कौन सी प्राप्तियां कहते हैं, जो गुणों की प्राप्तियां। इसीलिए कहा जाता है अगर धन गया कुछ नहीं गया, ये तो हाथों की मैल है, उतर गया फिर चढ़ेगा। स्वास्थ्य गया कुछ गया अवश्य, क्योंकि स्वास्थ्य जल्दी नहीं आता है, फिर समय लगता है वापस आने में। पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हम तो एक चित्र दिखाते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया कैसे। समझो चरित्र गया, हत्या की, या चलो हत्या न भी की, घूस लिया, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, करप्शन जो भी लिया, पकड़ा गया, पकड़ा गया उसको जेल में डाला। अब जेल में वो इतना टेंशन में था, शराब पी लिया, और इतना शराब पी लिया जो किसी की हत्या कर ली। मान लो आजकल तो क्या नहीं होता है, तो कहां, वो केवल करप्शन का ही केस था और वो जेल में गया, लेकिन अंत में क्या नतीजा होगा, उसको फांसी भी मिल सकती है। चलो फांसी न भी मिली, उम्र कैद भी मिल गई, और उसी तड़पन में उसी दुख में वो अगर मर भी गया और शराब भी पीता रहा मान लो, तो अगर वो मर गया तो उसका अगला जन्म कैसा होगा। ऐसा ही होगा, शराबी के घर में, ऐसे दुखी के घर में, क्योंकि कर्म ऐसे किए। क्योंकि जब कोई मनुष्य मरता है तो क्या कहा जाता है, अपने कर्म ले गया। कौन ले गया कर्म, आत्मा ले गई। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, भाग्य लेकर आया, ये बच्चा पैदा हुआ ना, उसके बाद मेरा ये भाग्य जगा। तो बच्चा पैदा हुआ भाग्य लाया, और मर गया कोई व्यक्ति तो कर्म लेकर गया, क्योंकि वो कर्म ही भाग्य बन जाते हैं, भाग्य बन जाता है और फिर वो जन्म लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर अंत में वो दुखी स्थिति में वो मरा तो उसका अगला जन्म कैसा होगा, कोई सुखी थोड़ी होगा, क्योंकि वही संस्कार आत्मा लेकर के गई। इसलिए चरित्र गया तो सब कुछ गया, केवल एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया। तो आप सोचो धन गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए सर्व प्राप्तियों में सबसे ऊंची प्राप्ति जीवन में चरित्र है, वैल्यूज है, गुण है, और उसमें सबका राजा संतोष है। तो इसीलिए फिर कई कहते हैं हमारे लिए तो योग वोग है नहीं, हम तो कर्म योगी है, आई बिलीव इन एक्शन, मेडिटेशन को हम मानते नहीं। तो हम कहते हैं कि और कई तो क्योंकि धर्म के कारण भी समझते ये हमारे धर्म में नहीं है, ये तो हिंदुओं का या जो कुछ भी। वैसे तो अभी 21 जून आ रहा है, हर सारे विश्व में योग को इतना महत्व दिया है, लेकिन इसमें भी मेडिटेशन का महत्व बहुत है। शारीरिक क्रियाएं वो तो ठीक है, वो शरीर को तंदुरुस्त रखेगी, लेकिन मेडिटेशन को क्यों महत्व है, क्योंकि यही सर्वोत्तम प्राप्ति है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या कहते हैं, अभी अपनी डाइट को कंट्रोल करो, हल्का एक्सरसाइज करो और मेडिटेशन करो। क्योंकि हार्ट अटैक क्यों आया, आजकल तो जवानी में ही हार्ट अटैक आ जाता है, इतना स्ट्रेस है। तो जो कहते हम क्यों मेडिटेशन करें, हमारे धर्म में नहीं है, ये नहीं है, वास्तव में सबके लिए है ये, क्यों, और हर एक प्रैक्टिस कर सकता है, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, बस उसको सिर्फ अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी है, अंतर आत्मा की आवाज। कई समझते चलो शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं, तो शारीरिक क्रियाएं सब कुछ है, लेकिन 80% शरीर के रोगों का कारण तो मन है। 80% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, 20% और कारण हो सकते हैं शरीर के रोगों के, लेकिन 80% साइकोसोमेटिक है। तो साइको कम्स बिफोर सोमेटिक, मन की बीमारियां, तनाव, चिंता, भय, क्या नहीं, आजकल डिप्रेशन की कितनी बड़ी बीमारी बढ़ती जा रही है, युवकों में खास हम देख रहे हैं। लेकिन अंतर आत्मा की आवाज अगर हम सुने तो हम हर कर्म श्रेष्ठ करेंगे, पर अंतर आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, बुद्धि को दबा देते हैं और मन इंद्रियों के वश होकर चलता है। वास्तव में इंद्रियां जैसे मन कहे वैसे चले और मन जैसे बुद्धि कहे वैसे चले। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, कर्म एक्सटेम्पो नहीं करो, बस कर लिया फट से बिना सोचे, क्योंकि इसका नतीजा क्या हो सकता है वो भी सोचना होता है। पर कई लोग फट से गलत कर्म कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो कर लेने के बाद समझते ये गलत था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और गलत करने के बाद फिर समझने के बाद फिर सोचते हैं अभी क्या करें, कैसे सारे एविडेंस मिटाएं, कैसे ये सब करें, गलत तो हो ही गया। इसीलिए ये भी कहते हैं कि अगर आपने गलत कर्म कोई किया है बता दो फट से, हाँ सच बता दो, छिपाओ नहीं, हाँ सच बता दो गलत काम किया, क्योंकि जितना गलत काम करते जाएंगे आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं छिप कर रहा हूं, क्योंकि छिपेंगे ही नहीं, क्योंकि आदत है तो खुला भी कर लेंगे फिर पकड़े जाएंगे। इसीलिए गलत कर्म किया सच बताकर माफी ले लो, और अगर अच्छा कर्म किया तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना गीता में आता है कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है पर फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, तो कर्म अच्छा करो फल अपने आप भगवान देगा, आपको क्यों सोचना है, वो तो उनके ऊपर है, आप अच्छा कर्म करो बस और कुछ नहीं। अंतर आत्मा की आवाज सुनो, और वो कैसे सुन सकेंगे जब मेडिटेशन करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, सुख का अनुभव करना अंदर जाओ, सब कुछ आपके अंदर है। अब सब कुछ अंदर है का मतलब क्या है, किसके अंदर है, आत्मा के अंदर है। इसीलिए जस्ट हियर योर इनर वॉइस, आत्मा की शक्ति को पहचानो और फिर परमात्मा से योग लगाओ। लेकिन कई कहते हैं हम भगवान को याद तो करते हैं लेकिन मन बहुत भटकता है। अर्जुन ने यही कहा भगवान को, हे भगवान ये मन बहुत भटकता है, घोड़े के समान है, हाँ ये तो दौड़ता ही रहता है, इसको वश करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने दो शब्द दिए गीता के अंदर आते, मन क्यों भटकता है, इसका मूल कारण क्या है, वास्तव में स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूं ये पता ही नहीं है, ईश्वर कौन है ये भी पता नहीं है। तो और फिर मन इतना मैला हो गया है, जो ये मन में ईश्वर स्थान लेगा कैसे, इतना मैला हो गया है तो दौड़ेगा ना। इसलिए भगवान ने दो शब्द दिए गीता में आते हैं, एक कहा वैराग्य और दूसरा कहा अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से आप मन को वश में कर सकते हो। तो जब वैराग्य शब्द सुनते हैं ना तो लोग घबरा जाते, कहते तो क्या हमको सन्यासी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना नहीं है, वैराग्य का मतलब सन्यासी बनना नहीं है, वैराग्य का मतलब है जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निराला न्यारा रह सकता है, वैसे संसार में रहो पर संसार आप में न रहे, इसको कहते हैं वैराग्य। संसार को छोड़ना नहीं है, परिवार को अपना ये जिम्मेदारियों को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, यही तो जीवन जीने की कला है ना। तो मेडिटेशन क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जीवन तो सभी जी रहे हैं लेकिन कैसा जीवन हमें जीना है, कैसा जीवन हमारा हो, तो जीवन जीना भी एक कला बन जाए, अगर जीवन में दुख और शांति, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, खिटपिट, ये सारा दिन चलता रहता, वो जीवन है क्या? वो तो नरक है। परंतु जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, दया हो, सद्भावना हो, सहयोग हो, तो जीवन तो एक वरदान है भगवान का। और मानव जीवन को तो वैसे ही कहा गया है हीरे तुल्य जीवन, लेकिन कहीं हम उसे कौड़ी तुल्य तो नहीं गंवा रहे हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। तो उसके लिए शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए, और उसके लिए परमात्मा से योग चाहिए। आपका मोबाइल अगर उसकी चार्ज खत्म हो गई तो आप कैसे यूज कर सकेंगे? उसको चार्ज करना पड़ता है, पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है, तब फिर से चार्ज आएगा आपके मोबाइल में, चार्जिंग होगी। तो परमात्मा वो पावर हाउस है, उससे अगर मन की तार जुड़ गई तो आपको इतनी आंतरिक शक्ति आएगी जो आप सब परिस्थितियों का सामना सहज कर सकेंगे। इसीलिए हम क्यों नहीं मन लगता ईश्वर में, क्योंकि खुद को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, और मन इतना मैला है, और उस मैले मन में परमात्मा स्थान कैसे लेगा? जैसे दूध शुद्ध चीज है, उस शुद्ध चीज को रखने के लिए बर्तन को कितना साफ करना पड़ता है। अशुद्ध बर्तन में, खटाई वाले बर्तन में दूध रख दिया और उसको उबाला तो क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं। तो परमात्मा की याद के लिए मन का, मन रूपी पात्र का शुद्धिकरण चाहिए। केवल बाह्य शुद्धिकरण नहीं, यहां स्नान पानी करके चलो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण। इसीलिए वो शुद्धिकरण कहां से आएगा? जब हम पहले आत्मा को जानेंगे, खुद को जानेंगे। तो कल आपको आत्मा की पहचान मिल गई। अगर आपसे कोई पूछेगा आप कौन हैं, तो क्या जवाब देंगे? अभी कौन है आप सब? कौन है? फलाना है फलाना, ये नाम रूप धर्म जाति ये बताएंगे? क्या बताएंगे? आप कौन हैं जी? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, आत्मा है। तो आत्मा क्या चीज है? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है। और आत्मा के अंदर ही ये सारे गुण हैं, जिसको हम इननेट वैल्यूज कहते हैं, कोर वैल्यूज। क्योंकि दुनिया में जितने भी वैल्यूज का वर्णन आता है ना, चाहे सोशल वैल्यूज, चाहे रिलीजियस वैल्यूज, चाहे मेडिकल वैल्यूज, हर एक प्रोफेशन में वैल्यूज है, मीडिया में भी कितने वैल्यूज है, लेकिन जितने भी वैल्यूज सिस्टम है, उन सब का जो मूल आधार, ये सात मूल गुण है, जिसको हम कोर वैल्यूज कहते हैं। जैसे सात रंग होते हैं, ये कोर रंग है, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके आधार से जितने भी प्रकार के रंग बनाना चाहो बना सकते हो, पर सात रंग है, सात सुर है, सात सुर में ही सारा म्यूजिक का संसार समाया हुआ है, सात दिन है, जीवन ही सात दिन का है ना? तो ये आत्मा के मूल सात गुण हैं, और हर एक आत्मा ये कोर वैल्यूज को अनुभव कर सकती है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान भी एक वैल्यू है जो आत्मा के अंदर ही है। ज्ञान चाहिए तो भी अंदर जाओ, बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर से जो मिलेगा वो इंफॉर्मेशन है, इट्स ऑल इंफॉर्मेशन, पर रियल नॉलेज इज फ्रॉम इनसाइड। जहां ये ज्ञान है आत्मा का, तो अंदर में प्यूरिटी आती है, पवित्र विचार आते हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूं, आपको भी आत्मा रूप में देख रही हूं, तो मेरे मन में कोई अशुद्ध विचार नहीं आएंगे, प्योर विचार आएंगे। और जहां पवित्रता है वहीं शांति है। पीस की मदर है प्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स विल लीड टू पीस। और जहां शांति है वहां प्रेम है, आत्मिक प्रेम सबके लिए, सारे संसार के लिए। और जहां ये प्रेम है वहीं सुख है, आत्मिक सुख, ये आत्मिक सुख है। और जहां सुख है वहां आनंद है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, जितने भी संत महात्माएं हैं उनके जो नाम होते हैं ना, वो अंत में आनंद से होते हैं। सच्चिदानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, दयानंद, शांतानंद आदि आदि आनंद। तो आनंद कम्स एट द एंड और सारे और बाकी गुण उसके पहले। तो सबका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू इज ब्लिस, इनर ब्लिस। और उसी आनंद की स्थिति में शक्ति है, जिसको हम विल पावर कहते हैं, विवेक आनंद। तो वो भी आनंद आया, विवेक से आनंद आया और वो मनोबल बन जाता है। तो आत्मा क्या चीज है, इन सब गुणों की स्वरूप है। और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, उसके उसका टेम्पररी घर ये है, ये भ्रकुटी, जहाँ स्त्रियाँ तिलक लगाती है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आत्मा का मूल स्थान है। और परमानेंट स्थान कहाँ है, आप जब फॉर्म भरते तो दो एड्रेस लिखनी पड़ती है, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो आत्मा की परमानेंट एड्रेस इस सृष्टि रंगमंच से बहुत पार, परम धाम की मैं आत्मा निवासी हूँ। इस सृष्टि मंच पर तो मैं मेहमान हूँ, ये दुनिया तो एक रंगमंच है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं, मेरा असली घर ये संसार नहीं है। हम आत्माएं सब परम धाम की निवासी है। और क्यों आए इस दुनिया में, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो कई जवाब मिलते हैं। हम धन कमाने लिए नहीं आए हैं, मकान जमीन जायदाद ये सब नाम वाम, इसके लिए केवल इस संसार में नहीं आए हैं। लेकिन हम क्यों आए हैं, एक एक्टर की तरह इस सृष्टि रंग मंच पर पार्ट बजाने। आत्मा इसलिए आई है क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। जैसे एक्टर के अंदर एक्टिंग के संस्कार होते हैं, लेकिन स्टेज चाहिए तभी तो एक्टिंग करेगा। किसके अंदर कोई कला है तो स्टेज चाहिए वो कला प्रदर्शन करने लिए। तो हर आत्मा एक कलाकार है, कर्म करने की कला है, और वो शरीर चाहिए, और शरीर एक वस्त्र है। तो ये जब हम अनुभव करते हैं तो महसूस होता, मैं आत्मा कर्म करने लिए आई इस दुनिया में, तो कौन से कर्म मुझे करने चाहिए। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे से अच्छे कर्म, द बेस्ट वे पॉसिबल। जैसे कोई एक्टर को जो एक्टिंग मिलती है तो कहेंगे अच्छे से अच्छी एक्टिंग इसने बजाना, अच्छे से अच्छी एक्टिंग, और अच्छे से अच्छी एक्टिंग बजाई तो कहेंगे वंस मोर वंस मोर, और अच्छी एक्टिंग नहीं है तो कहेंगे छोड़ो छोड़ो इनाफ इनाफ, ताली बजा देंगे पूरा हुआ। तो इसीलिए हम किस लिए इस संसार में आए, आत्मा है ये समझा। और आत्मा किसकी संतान है, परमात्मा की संतान। जो चीज जहां से आई है उसको वहीं जाना है। जब किसकी मृत्यु होती है तो अग्नि संस्कार करते हैं, तो वो शरीर जो पंच तत्वों का है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो शरीर पंच तत्वों से आया है, पंच तत्वों में विलीन होना है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे, भगवान के घर से आई है, भगवान के पास जाना है। तो आत्मा का सोर्स कौन है, परमात्मा है। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो क्या कहते, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, भगवान के पास गए, क्योंकि सोर्स परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा है कौन, हु इज ही, फिर दूसरा वेयर इज ही, तीसरा हाउ इज ही, चौथा है व्हेन डज ही कम, वो आते हैं या नहीं सृष्टि पर, और आकर अगर आते हैं तो क्या कर करते हैं, और हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। ये सारे प्रश्न है ईश्वर के बारे में। अब उनका उत्तर आपको आज देंगे। पहली बात तो हम ये जरूर समझते हैं कि परमात्मा एक है, अनेक तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा को हम सत्य कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ का मतलब क्या है, सत्य। और सत्य हमेशा एक होता है, झूठ तो कई होते हैं। किसी व्यक्ति को सत्य छिपाना है और झूठ बोल देना है, चलो झूठ बोल दिया, फिर उस झूठ को साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं ना कि वो चलेगा एक ही झूठ, क्योंकि उसने वो अगर वो कहता है मैं तो उस समय वहां था ही नहीं जब ये हुआ, अच्छा उस समय कहाँ थे, फिर दूसरा झूठ वो बताएगा मैं वहां था, फिर उस समय क्या कर रहे थे तीसरा झूठ, फिर उसके बाद वहां से कहाँ गए चौथा झूठ, क्योंकि कई पूछते हैं ना, कई बातें तो पूछी जाती है। तो एक सच को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए सच एक ही होता है और परमात्मा को सत्य कहते हैं तो वो तो एक ही होगा ना, लेकिन उस एक को पहचानना ये बहुत जरूरी है। तो एक हम किसको कहेंगे, अब कई समझते हैं परमात्मा के विषय में जब हम पूछते हैं तो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। अब दो शब्द है आत्मा और परमात्मा, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। आत्मा के लिए तो कहेंगे पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देवात्मा, आत्मा के लिए तो कई विशेषण यूज करेंगे, लेकिन परम आत्मा वो एक सुप्रीम, सुप्रीम के ऊपर कोई शब्द है नहीं, परम के ऊपर कोई शब्द है नहीं, इसीलिए दोनों एक है ये कईयों की सोच है। पर आत्मा माना सदा देव आत्मा बन सकती है, पाप आत्मा बनती है, लेकिन परम आत्मा बन जाए ये कैसे होगा। परमात्मा कोई डिग्री थोड़ी है जो आत्मा परमात्मा बन जाएगी, वो तो आपका पिता है, आप अपने बच्चों के पिता बन सकते, पर आपके पिता के आगे तो आप बच्चे ही हो ना, चाहे कितने भी बच्चे हो आपको। इसीलिए आत्मा और परमात्मा एक है ये नहीं कहेंगे, आत्मा परमात्मा को याद करती है। फिर कई कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, अब इसको भी हमें समझना है, अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो क्या आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है क्या, अब ये चीज है मेरे पास, इसके टुकड़े टुकड़े गिर जाए, टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो गए तो फिर थोड़ी ऐसे जुड़ेगा, तो टुकड़े थोड़ी है जो हम जाकर के फिर जुड़ेंगे और एक ईश्वर हो जाएंगे, नहीं, परमात्मा तो सदा एक ही है, वो तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, इसीलिए पार्ट ऑफ गॉड नहीं। लेकिन हाँ, जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के भी गुण हैं, क्वालिटीज आर द सेम। परमात्मा शांति का सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है, क्वालिटी इज सेम, इसलिए उसको अंश कह दिया है। लेकिन वास्तव में हम वंश हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, अधिकारी हैं, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, इसलिए नॉट जस्ट पार्ट ऑफ गॉड, यस क्वालिटीज आर द सेम, इन दैट वे यू कैन से पार्ट ऑफ गॉड, इन द सेंस जो ईश्वर के गुण है मेरे भी अंदर वही गुण है। और तीसरा फिर है, कई समझते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर परमात्मा सब जगह है तो आज दुनिया में इतना दुख क्यों, इतने रोग क्यों, इतनी बीमारी, ये सब लड़ाई झगड़ा क्यों, परमात्मा तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वो सब जगह हो। आज अगरबत्ती एक कोने में जलती है लेकिन सारे हॉल में सुगंध करा सकती है, और परमात्मा इतने गुणों का सागर और सब जगह, और दुनिया में ईश्वर के गुण तो दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ क्या है। अवश्य ये भावनात्मक स्थिति है, अगर ईश्वर को हम सब जगत देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो एक तो परमात्मा के प्रति ये भावना रहेगी कि हाँ भगवान मेरे साथ है, मुझे ईश्वर का साथ है, सहयोग है, इसलिए डरने की बात नहीं है, भगवान मेरे साथ है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये क्यों लिख दिया सब जगह है, क्योंकि उनको पता था आगे चल के घोर कलयुग आएगा, और घोर कलयुग आएगा माने बहुत पापाचार बढ़ जाएगा, तो भगवान से डरो, वो सब जगह आपको देख रहा है, सब जगह है वो आपको देख रहा है, इसलिए कोई पाप मत करो, छिपकर पाप करते पर जहां छिपकर करते भी वो भी भगवान देख रहा है, सब जगह है। तो इसीलिए ये डर रखे रहे परमात्मा का, लेकिन हम कहते हैं गॉड फियरिंग भी नहीं बनो, वो तो आपका पिता है। तो पिता माना प्यार का सागर है, वो बच्चों को कितना प्यार करता है, तो डरना थोड़ी है परमात्मा से। तो हम कहते हैं डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग, ईश्वर से प्रेम करो। और जहां ईश्वर से प्रेम होगा आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पिता का नाम बदनाम होगा, है ना। कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो ये पूछेंगे ये किसका बेटा है, किसका बच्चा है, फलाने का बच्चा, अच्छा फलाना वो व्यक्ति तो कितना अच्छा है और बेटा ऐसा। तो बेटे के कारण पिता का भी नाम बदनाम होता है। इसीलिए परमात्मा से मेरा प्यार है तो मैं कोई गलत काम नहीं करूं, नहीं तो भगवान का नाम बदनाम कर लूंगा। इसीलिए ईश्वर सब जगह है ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सिद्धांत कुछ और है। फिर कई कहते हैं अच्छा है, वो तो सबके दिल में बैठा है, गॉड ड्वेल्स इन एवरीवन्स हार्ट। अब दिल भी एक, वो तो धड़कता है, ब्लड को पंप करने का वो एक ऑर्गन है। आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, बाईपास सर्जरी होती है, न जाने क्या क्या होता है। तो भगवान भी ट्रांसप्लांट हो गया, हाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो दिल में बसना माना भगवान को दिल में स्थान देना, अर्थात उतना प्रेम व्यक्त करना, जैसे हनुमान के लिए दिखाते राम को दिल में बसाया। तो ये तो भावना का स्थान है, परंतु सिद्धांत क्या कहता है। फिर यहां तक कह देंगे ही लिव्स इन द सेवेंथ हेवन, सातवां आसमान। अब सातवां आसमान कौन सा है उसको भी तो हमें समझना होगा। इसलिए ये सारे कंसेप्ट्स है। फिर कई कहते हैं नेचर इज गॉड, ईश्वर क्या है, ये प्रकृति सब ईश्वर है। अब ये प्रकृति तो प्रकोप लाती है, क्या नहीं प्रकोप लाती है, कितना दुख देती है प्रकृति। आज इतनी गर्मी हो गई है, हाउ कैन यू कंट्रोल इट, कितना टाइम हम एसी में बैठेंगे। इसीलिए प्रकृति अगर आज दुख रूप है तो क्या भगवान इतना दुख देता है क्या। फिर कई कहते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो फिर किसको याद करें, ना नाम है ना रूप है ना गुण है, कुछ भी नहीं है, नेमलेस फॉर्मलेस टेस्टलेस लेस लेस लेस। फिर कहते हैं जो लेस 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 करते जाओ जो बाकी बचे वो ईश्वर, यहां तक फिर कह देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाकी बचे, यानी सब हटाते जाओ जो बाकी बचे वो ईश्वर। व्हाई नॉट गो डायरेक्ट टू गॉड, नाक पकड़ना है तो सीधा पकड़ो ना, उल्टा करके हाथ को क्यों पकड़ना है। इसलिए हु इज गॉड, अगर गॉड कहते ईश्वर कहते प्रभु कहते ये किसको कहते हैं, किसको याद करना है। तो फिर ये कई प्रश्न मन में उठते हैं। फिर कहते हैं सब ईश्वर के रूप है ना, दो बोथ आर कॉन्ट्ररी, या सारे ईश्वर के रूप है या ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं है। तो देखिए मनुष्य आज इतने मूंछे हुए हैं जो बात मत पूछो, और अंत में इसलिए मनुष्य कहते हैं भगवान भगवान कोई चीज है ही नहीं, बस अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम किसी को दुख नहीं देते, भगवान को याद भी क्यों करें। अब ये भी गलत है सोच, ईश्वर विश्वर कोई है नहीं, माना आपके ऊपर कोई नहीं है क्या, आप ही सर्वे सर्वा हो क्या। नहीं, हमारे ऊपर भी कोई है, लेकिन उसको पहचानना है, और जब उसकी पहचान मिल गई तो उसको याद करने से क्या प्राप्तियां होती है वो भी हमें अनुभव करनी होगी। इसीलिए ये कंसेप्ट्स तो बहुत है, लेकिन हम आपको कुछ कसौटी बताएंगे ना। जैसे कोई सोनार के पास जाइए, आप उनको कहें कि भाई साहब ये जरा देखो ये सच्चा सोना है, ये कितनी इसमें कितना सोना है इसके अंदर, वैल्यू क्या है। तो वो सोनार जो होता है ना वो कसौटी पर रगड़ता है उस सोने को, और उससे उसको पता चलता है कि अंदर कितना सोना है। तो कसौटी होती है और उससे पता चलता है। तो हम भी आपको पांच बातें बताएंगे जो इनडायरेक्ट तरीके हैं, जिसके आधार से हम पहुंचेंगे कि आखिर ईश्वर कौन है। हाँ, जैसे हम साइंस में, मैं भी विज्ञान की छात्रा रही हूं, तो हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे, तो प्रैक्टिकल्स में हमें कोई धातु मिलता था और हमें कहा जाता था कि आप इस धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को पहचानो और उसके आधार से ये क्या चीज है उसको समझो, वो बताओ। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किससे मिलती है उसको हम नोट करते थे और ये चीज क्या है वो पता करते थे। इसको कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, जो आप जानते हैं उससे जो नहीं जानते उस तक पहुंचना, नोन टू अननोन। अब ईश्वर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, और वो जानते हैं जो सभी धर्मों को स्वीकारो। मान्यताएं अनेक है वो अलग बात है, लेकिन एक मान्यता जो सभी धर्मों को स्वीकार हो, कोई भी देहधारी व्यक्ति हम उनको भगवान माने लेकिन सब धर्म वाले थोड़ी मानेंगे। किसी देवता को भी हम भगवान मान लें लेकिन और धर्म वाले थोड़ी उसको मानेंगे। देवताओं में भी आप राम को मानते हो परंतु जो कृष्णपंथी है वो राम को भी नहीं मानेंगे, वो कृष्ण को ही मानेंगे। और जो कृष्णपंथी है वो राम को नहीं मानेंगे, रामपंथी कृष्णपंथी कृष्ण को नहीं मानेंगे। और जो शिवपंथी है वो शिव को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। ऐसे भी है कई वैरायटी है थॉट्स। तो परमात्मा हम उसको कहेंगे जिसको सब स्वीकार करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी को भी मानता हो, उसको हम परमात्मा कहेंगे। दूसरा, परमात्मा उसी को कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिनके ऊपर कुछ कोई और ऊंचा न हो। कोई भी देहधारी सर्वोच्च नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे माता पिता हमसे ऊंचे हैं। भले वो अनपढ़ भी क्यों न हो लेकिन हमको जन्म दिया है तो हमारे लिए वो उनका जैसे ऋण चुकतु नहीं कर सकते हम, तो मात्र ऋण, पितृ ऋण, क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, जन्म दिया है। तो माता पिता हमसे ऊंचे हैं, हमारा शिक्षक हमसे ऊंचा है, भले वो प्राइमरी स्कूल टीचर रहा हो, प्राइमरी में पढ़ाया हो और अभी मैं वाइस चांसलर बन गया किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन फिर भी कहेंगे मेरा टीचर है ना। तो टीचर माना परमात्मा वो मात पिता है जिसका कोई मात पिता नहीं, इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं। वो मात पिता जिसका कोई माता पिता नहीं, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम वो विद्या दाता हो जिसको कोई और सिखाने वाला नहीं है, जिसका कोई टीचर नहीं। और सबसे ऊंचा सतगुरु हो जिसका कोई गुरु नहीं है। आज कितने भी गुरु होंगे लेकिन फिर भी कहेंगे फलाने का शिष्य। विवेकानंद ने दुनिया में नाम कमाया लेकिन फिर भी कहने में आएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कहेंगे ना। तो ये तीन संबंध जीवन में सदा हमसे ऊंचे हैं, माता पिता, शिक्षक, गुरु। और एक चौथा संबंध भी है, रक्षक, जिसने मेरी जीवन की रक्षा की, मुझे बचाया, उसका ऋण भी कभी चुकता नहीं हो सकता, भले वो आयु में छोटा क्यों ना हो। आप कहेंगे किसी डॉक्टर ने आपकी जान बचाई, आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपका ऋण मैं कभी चुकता नहीं कर सकता हूं, आपका एहसान मैं सदा ही मानूंगा। तो ये चार संबंध ऐसे हैं जो सदा हमसे ऊंचे हैं। अब परमात्मा के ऊपर ये चार संबंध है ही नहीं, न उनका कोई माता पिता है, न कोई शिक्षक है, न कोई गुरु है, न रक्षक है। उनको परमात्मा को रक्षा की जरूरत नहीं है। अब वो कौन है? फिर तीसरी बात, परमात्मा उनको ही कहेंगे जो सबसे न्यारा भी है। तुम्हारी गत मत तू ही जान, ईश्वर को हम कहते हैं न्यारा है। कौन कौन सी बातों में न्यारा है? ऊंचे से ऊंचा भी है और न्यारा कौन सी बातों में? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में आती है, हम पाप आत्मा भी बनती है, पुण्य आत्मा भी बनती है। परमात्मा इन सब चक्रों से न्यारा है। कौन से चक्र इस संसार में है? जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण के साथ कर्म फल का चक्र है, कर्म फल के चक्र के साथ पाप पुण्य का चक्र है, पाप पुण्य के चक्र के साथ सुख दुख का चक्र है, ये सब चक्र है। फिर मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय ये सब चक्र हैं, जिसको हम कहते हैं एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, सापेक्ष है, कंपैरेटिव है। लेकिन परमात्मा निष्पक्ष भी है, निर्लेप भी है, सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है, बिकॉज ही इज वन, नो कंपैरिजन, नो टू पैरेलल लाइंस कि यहां दोनों अलग होंगे और फिर एक होंगे, नहीं, वन, एक ही है। इसीलिए यूनिक इसको कहते हैं, निर्गुण निरंजन निराकार, ये शब्द यूज करते हैं हम। तो निर्गुण का कई अर्थ लेते हैं, नो क्वालिटीज, नो वर्च्यूज। निर्गुण का अर्थ ये अर्थ नहीं है कि कोई गुण ही नहीं है। ईश्वर के तो इतने गुण बताते हैं कि सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ। साक्षात सरस्वती विद्या की देवी ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी नहीं होगी, इतनी स्तुति। और फिर कहते हैं निर्गुण, तो निर्गुण का मतलब क्या है कि परमात्मा के जो गुण है ना, वो प्रकृति के गुण नहीं है। हम लोग साइंस में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, एक एक चीज का अपना जो गुण है ना, वो गुण उस टेबल में दिखाते, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हर चीज में अपना अपना गुण है, पर ये प्रकृति के गुण है। और ये प्रकृति के गुणों को हम तीन गुणों में डाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतो रजो तमो, ये तीन गुण प्रकृति के अंदर आते हैं। हर चीज प्रकृति की परिवर्तनशील है, हर चीज। ये आज नया लग रहा है, 100 साल के बाद ये कितना पुराना हो जाएगा, मान लो, हर चीज। लेकिन परमात्मा कभी ऐसे पुराना थोड़ी होगा, वो सतो रजो तमो में नहीं आता। इसलिए निर्गुण माना त्रिगुण से परे, प्रकृति त्रिगुण है, आत्मा उस शरीर और ये परमात्मा उसकी भेंट में निर्गुण है। तो निर्गुण निरंजन निराकार, निरंजन का मतलब है कोई लेपछेप नहीं लगने वाला, किसी भी प्रकार का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, निरंजन है। निर्गुण निरंजन निराकार है, तो निराकार का कई अर्थ लेते, उसका कोई आकार ही नहीं है, पर निराकार का अर्थ है उनका कोई प्राकृतिक आकार नहीं है, उसी को हम निराकार कहते हैं। पर अपना निजी रूप तो होगा ना, जो निराकार स्वरूप है। अब वो निराकार स्वरूप कौन सा होगा वो भी आपको बताएंगे। और फिर चौथी बात परमात्मा के लिए है कि वो सदा दाता है, देने वाला, जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता, ईश्वर देता है हाँ छप्पड़ फाड़ के। मनुष्य दाता नहीं बन सकता है, वो भी लेगा, ईश्वर से ही लेगा। दाता तो केवल एक परमात्मा ही है। और परमात्मा को और फिर कहते ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिवान, परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। फिर ओमनीशियंट भी कहते हैं, ओमनीशियंट का मतलब है ज्ञान का सागर, सागर है ज्ञान का। उनको कहीं से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जिनके साथ लगती हो उनको हम परमात्मा कहेंगे। अब हम देखेंगे एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, किसी भी धर्म पिता ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लाइट, लीड मी thy काइंडली लाइट। जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे तब भी क्राइस्ट ने क्या कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर their डूइंग्स, हे पिता आप इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो क्राइस्ट ने किस पिता को याद किया, वो परमात्मा कौन। इसी प्रकार मुसलमान लोग मक्का में जाते हज करने के लिए, तो वहां एक काला पत्थर है जिसको संगे अस्वद कहते हैं, संगे अस्वद। तो वो संगे अस्वद या नूरे इलाही, स्टोन ऑफ काबा, ये जो है इसका मतलब क्या है, भी कहते मोहम्मद ने अल्लाह से लिया और वो यादगार है। कई तो हिंदू लोग मानते हैं वो वहां भी शिव का मंदिर होगा, और फिर वो काबा का पत्थर बना दिया, बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही है। पहले तो वहां पास जाके चूमते भी थे उसको वहां, और फिर उसको शीशे में रखा, फिर तो अभी तो उसको बंद ही कर दिया है। लेकिन कैसे उसको जब तक वहां न जाए तब तक अपनी हज यात्रा को सफल नहीं मानते मक्का में। तो इसीलिए वो पत्थर किसकी निशानी है? वो परमात्मा की निशानी है। मोहम्मद ने भी कभी नहीं ये कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह हूं, उसने क्या कहा? मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। तो पैगंबर तो किसी क्या पैगाम लाएगा ना। इसी प्रकार गुरु नानक ने भी कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूं, और यही कहा नानक नीच, अपने आप को दास कहा, नीच कहा, सेवक कहा, मैं भगवान हूं कभी नहीं कहा। सारा जो ग्रंथ है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, ये सब ज्योति की महिमाएं, परम ज्योति भी कहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हम किसको कहेंगे? एक ओंकार जो एक है, वो ओम आकार है। तो ये ओंकार का भी अर्थ है ओम आकार, ये तीन अक्षर का बना हुआ है ओम। वास्तव में ये आत्मा की भी निशानी है, अ ओम वही मैं आत्मा हूं, और फिर एक आगे से जोड़ दो मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो एक ओंकार। और फिर ज़ोरास्टर जो पारसियों का गुरु है, गुरु था, उसने भी यही कहा आउरा मजदा, वो फायर टेंपल को मानते, फायर को मानते हैं पारसी लोग, ज़ोरास्टर उनके गुरु थे, तो वो भी लाइट को मानते हैं। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध या महावीर, महावीर और बुद्ध ये दोनों कंटेम्प्ररीज थे, लगभग एक ही समय पर आए हैं, और उनको हमेशा तपस्या में दिखाया। तो वो उन्होंने किसका ध्यान किया? महावीर ने किसका ध्यान किया? बुद्ध ने किसका ध्यान किया? जिसका ध्यान करके उन्होंने बोध को प्राप्त हुआ, उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने किसका ध्यान किया ये हमें देखना है। और भारत में भी आज जितने शिव के मंदिर हैं उतने और किसी देवता के नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग मठों का वर्णन आता है, और जितने भी ये शिव के मंदिर हैं ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, जो भी जितने भी ज्योतिर्लिंगम है इन सब के अलग अलग नाम बताए हैं, सहस्त्र नाम है शिव के। लेकिन एक एक शब्द जो नाम है वो गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। किसी का नाम विश्वनाथ दुनिया में भी होता है, लेकिन विश्व का नाथ थोड़ी बन सकता है। अमरनाथ भी उसका नाम हो सकता है पर अमर थोड़ी बन सकता है ना। नाम भले कुछ भी रख ले, नाम जैसा गुण तो है नहीं। तो दुनिया में जो मनुष्य नाम रखते वैसे गुण हो ये जरूरी नहीं है। नाम होगा शांति और सारा दिन लड़ती रहती होगी पर नाम है शांति। गुणवाचक नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, कईयों के होते हैं गुणवाचक लेकिन सबके नहीं। लेकिन परमात्मा का नाम गुण और कर्तव्यवाचक है, उनके गुण और कर्तव्यों के आधार पर वो नाम पड़ा है। इसीलिए वो सबसे ऊंचा नाम, जिस नाम में सारे गुण समाए हुए हैं वो है शिव। शिव का मतलब ही है कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो जो सदा शिव है, कल्याणकारी है, जो सत्य है, जो सर्व गुणों का सागर है, वो परमात्मा है। लेकिन वो उसका स्वरूप क्या है? जब अमरनाथ में यात्रा करने जाते, अमरनाथ की यात्रा, चलो शिवलिंग कहेंगे, अपने आप बन जाता है, बूंद बूंद पड़ती है वो बर्फ बन जाती है और शिवलिंग बन जाता है। लेकिन फिर तो गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा, हाँ वो तो पिघलेगा ही ना। लेकिन परमात्मा का स्वरूप थोड़ी बदलता है। और परमात्मा हम किसको कहें? पशुपतिनाथ भी कहते हैं, सभी का पिता है वो सबका, क्योंकि उसी को रचयिता कहते हैं। सोमनाथ का मंदिर, जो भारत का सबसे श्रेष्ठतम मंदिर था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा, कितनी बार लूटा, इतने हीरे जवाहरात लूट के ले गया, उसको बनाया किसने, जिसने बनाया उसके पास कितना धन होगा और क्यों इतना सारा धन लगाया? क्योंकि परमात्मा की वो यादगार है। रामेश्वर में जाइए तो रामेश्वर में श्री राम ने भी शिवलिंग की स्थापना की, तो श्री राम का भी वो ईश्वर है। फिर गोपेश्वर में जाइए, गोपेश्वर में मथुरा में, वहां गोपेश्वर का मंदिर है, मथुरा वृंदावन जाइए तो श्री कृष्ण ने भी वो राक्षस का वध करने लिए पहले शिव का ध्यान किया। तो श्री कृष्ण का भी ईश्वर, श्री राम का भी ईश्वर, शिव शक्ति कहते हैं। इन शक्तियों को भी शक्ति देने वाला कौन? वो ज्योति स्वरूप, वो जिसको हम शिव कहते हैं। अब शंकर भी किसका ध्यान कर रहा है, सोचिए, शंकर ने भी शक्ति किससे ली, किसका ध्यान कर रहा है? जो काम को जीता, वो शक्ति देने वाला कौन? ध्यान माना जरूर इनसे ऊपर कोई शक्ति है जिसका शंकर भी ध्यान कर रहा है। फिर उनके आगे शिवलिंग दिखाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा किसको कहेंगे? वो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए जब ज्योति शब्द कहते हैं, उस ज्योति को हम निराकार कह सकते हैं। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में पॉइंट हैज नो मेजरमेंट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, नो लेंथ एंड ब्रेथ, एंड येट इट एग्जिस्ट विदाउट एनी लेंथ एंड ब्रेथ। इन्फिनिटी हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ एंड येट इट एग्जिस्ट। टू पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी। वैसे जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े नंबर को वो जीरो कर देगा अगर मल्टीप्लाई किया जीरो से तो, और जीरो नंबर को डिवाइड किया तो वो छोटे से छोटा नंबर भी इन्फिनिटी बन जाएगा। इतना वैल्यू है जीरो का, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है, पर जीरो का इतना महत्व है। तो परमात्मा जीरो लेकिन हीरो, जीरो और हीरो का मतलब है इन्फिनिट क्वालिटीज बट इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट। इन्फिनिटेसिमल डॉट में इन्फिनिट क्वालिटीज, इन्फिनिट वैल्यूज, बिंदु में सिंधु। तो निराकार का ये स्वरूप है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट येट इट एग्जिस्ट। इसलिए जब हम कहते हैं गॉड इज वन, तो अब मस्जिद, चर्च, मंदिर और या कुरान, बाइबल, गीता, इन सब में पांच पांच अक्षर है। तो पांच अक्षर माना दे ऑल प्रीच द सेम, 6 - 5 = 1। वो सब एक निराकार की तरफ ही संकेत करते हैं, जिसको ही हम ट्रुथ कहें, लाइट कहें, हाईएस्ट कहें। तो सब धर्म पिताओं ने उनको याद किया, इसीलिए हम जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार एक परिवार है। तो परिवार का मतलब क्या है? एक पिता और हम सब उनके बच्चे। और भारत में हम क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई। तो भाई भाई का मतलब क्या है? अगर हम पॉलिटिकली ले लें तो चलो भाई भाई का मतलब है धर्मनिरपेक्ष भारत के अंदर, हम कहेंगे कि सब धर्मों को अपनी अपनी मान्यता अनुसार पूजा करना या जो कुछ करना अलाउड है, चलो मान लिया। वो अलग चीज है कि सभी धर्म के अंदर समान मान्यता हो, लेकिन जब हम इसको स्पिरिचुअली लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई का मतलब क्या है? सबका पिता एक है। अगर सचमुच सब धर्म वाले ये समझ जाए ना कि सबका पिता एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, उनका पिता एक है, तो सबका आपस में कितना प्यार प्रेम हो जाए। तो ये राजयोग हमें और ही सिखाता है कैसे सबके साथ प्यार प्रेम से रहो, क्योंकि सबका पिता एक है और उस पिता को सब याद करे। करते भी हैं, हम देखते हैं सन्यासी, वो भी ज्योति को मानते हैं। आदि शंकराचार्य तो शिव की भक्ति करता था, तो आदि शंकराचार्य का भी वो सतगुरु हो गया, उनका भी पिता हो गया। फिर हम देखते हैं कि मुसलमान लोग भले उनके मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, लेकिन अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह का किसको कहेंगे, जरूर कोई नूर है, तो नूरे इलाही कहते हैं। तो वो नूर कौन सा, ज्योति कौन सी। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म वाले भी कैंडल जलाते हैं, वो कैंडल किसकी यादगार है। हिंदू धर्म में दिया जलाते हैं, ये दिया किसकी निशानी है, ये परमात्मा की निशानी है। सिख धर्म वाले भी एक ओंकार कहते हैं, वो किसकी या किसको याद करते हैं, एक निराकार ज्योति को ही याद करते हैं। और हम लोग भी उसी ज्योति स्वरूप को याद करते हैं। तो परमात्मा एक है और वो हम सभी आत्माओं का पिता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप में मानता है। तो परमात्मा वो बिंदु रूप है, पर उस बिंदु में सिंधु है, सर्व गुणों का वो सागर है। और फिर वो रहता कहाँ है, हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला जाने का मतलब क्या है, कहाँ ऊपर वाला। परमात्मा को त्रिलोकी नाथ कहते हैं, त्रिलोक का वो नाथ है। तो कौन से तीन लोक, एक है ये साकार दुनिया जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, जिसमें जो पांच तत्वों की दुनिया है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसको हम कहेंगे ये साकार लोक है, फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन उसके ऊपर एक सटल वर्ल्ड, एंजेलिक वर्ल्ड है, जिसके लिए कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म सृष्टि है, एंजेलिक फॉर्म है, उसका फिर विस्तार हम अलग से बताते हैं। और आत्माओं की दुनिया है ऊपर की दुनिया, जिसको हम शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, मूल वतन, निराकारी दुनिया आदि आदि नामों से याद करते हैं। ये आत्माओं का धाम है। तो परमात्मा भी तो एक आत्मा ही है ना, इसलिए परम आत्मा शब्द का, वो आत्मा है लेकिन परम है। किसमें परम है, साइज में परम नहीं है। जैसे आत्मा एक ज्योति है, परमात्मा भी एक ज्योति है, लेकिन ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में सबसे ऊंचा। इसलिए कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो जितना ही वो ऊंचे से ऊंचा है, उतना ही वो न्यारे से न्यारा भी है, जन्म मरण रहित है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते, लेकिन खुद न कर्म में आते हैं, न करता है, हाँ न भोगता है, वो तो अकर्ता है। तो अकर्ता अभोक्ता हम परमात्मा को कहते हैं, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। पर वो ज्योति की पूजा कैसे हो, इसलिए ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम नाम से पूजा जाता है। कई लोग लिंग शब्द को बड़ा अनर्थ ले लेते हैं, लिंग का अर्थ क्या लेते हैं, जेंडर से जोड़ देते हैं, लेकिन लिंग का अर्थ जेंडर नहीं है, पुलिंग के हिसाब से नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, सिंबल, सिंबल ऑफ लाइट। तो सिंबल ऑफ लाइट, हाउ विल यू डिपिक्ट अ सिंबल ऑफ लाइट, ये अंगुष्ठाकार प्रतीक, तो वो लाइट रूप अंगुष्ठाकार, उसी प्रतीक को हम याद करते हैं। और अभी परमात्मा कहते हैं, हाँ अभी शिवरात्रि आएगी, तो शिवरात्रि मनाते। शिवरात्रि का मतलब क्या है, शिव परमात्मा का अवतरण। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और इस सृष्टि का फिर से नवीकरण करते हैं, कलयुग को सत्युग बनाते हैं। और हम कह रहे हैं कि इस समय जो संसार की हालत है, ये पूरा अधर्म है, महाभारत में अधर्म का बहुत वर्णन है, धर्म की हानि, और भगवान के महावाक्य हैं, जब जब संसार में धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यम। मैं आता हूँ अधर्म का नाश करने, सद्धर्म की स्थापना करने। तो वास्तव में अभी वही समय चल रहा है। आज सृष्टि कहाँ खड़ी है? हम कहते हैं ऑक्सीजन पर चल रही है। ऑक्सीजन मीन्स लास्ट स्टेज, लाइक जस्ट लाइक ऑन वेंटिलेटर। आप सोच लिए कितनी देर तक वो बोरोड ब्रेथ पर सृष्टि खड़ी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे हैं मिसाइल्स। अभी अभी भी आज की न्यूज हमने जो सुनी, वो जो जो ईरान का राष्ट्रपति मरा, तो यही सब कहते हैं कि अमेरिका ने कराया। हाँ, ये अब अमेरिका भी, रशिया कहता है मैं इसका बदला लूंगा, कहीं थर्ड वर्ल्ड न इससे शुरू हो जाए। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन है चारों तरफ। आप लोगों ने अखबार तो नहीं पढ़ी होगी, ये पता नहीं होगा। अच्छा है नहीं पढ़ी है, तीन दिन जरूरत ही नहीं है न्यूज सुनने की भी जरूरत नहीं, तो कितनी अखबारें आपके सामने होती है। तो इसलिए, परंतु आज सचमुच ये सृष्टि ऑक्सीजन पर चल रही है। इट इज बोरोड ब्रेथ, इट इज नॉट योर नेचुरल ब्रेथ। अब ये कब तक रहेगा? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं आया हूँ, अपना सृष्टि का परिवर्तन कर रहा हूँ। तो जब गॉड कहते हैं ना GOD, तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। पर डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि खत्म कभी नहीं होती है, ये पंच तत्व अनादि अविनाशी है। जैसे आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, वैसे ये प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। अविनाशी जरूर है लेकिन परिवर्तनशील है प्रकृति, सतो रजो तमो में आती है। अब ये तमो प्रधान स्टेज है, एंड ऑफ कलयुग, लेकिन फिर सतयुग आएगा, रात के बाद फिर दिन आता है। तो परमात्मा अब फिर से इस सृष्टि पर आकर नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो शंकर का पाठ भी इनकॉग्निटो चल रहा है, विनाश का। तो कई समझते शिव शंकर एक है, हम कहते हैं नहीं, शिव शंकर भी शिव का ध्यान कर रहा है। तो शंकर से भी ऊपर है वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा। तो किसको कहेंगे परमात्मा? जब हम कहते हैं शिव तो हम लोग बहुत प्यार से कहते हैं शिव बाबा। परमात्मा को पिता कहते हैं, तो बाबा माना पिता, तो शिव बाबा। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। फिर उसकी महिमा क्या है? अपरम अपार, सब गुणों का वो सागर है। और उसका धाम कौन सा है? वही परम धाम, जो आत्माओं का धाम है। परमात्मा का भी वही धाम है। बच्चों का वही घर होगा जो पिता का घर है। ये संसार भी ईश्वर का घर नहीं है, इसलिए हम भगवान को याद करते, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। अभी यही कहते भगवान कहीं आया होगा, कल की अवतार, कल की अवतार। जितने भी जिन्होंने भी भविष्यवाणियां की है वो सब इस समय की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो सचमुच ये अंत का समय है, और अब परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य सृष्टि के परिवर्तन का कर रहा है। और उसके लिए हमें क्या कहता है? हे आत्माएं अब मुझे याद करो, यही राजयोग है। तो किसको याद करना है? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्व गुणों का सागर है, परम धाम का निवासी है, और हम सब आत्माओं का परम पिता है, जिसके जिस धाम से हम आए हैं उसी धाम में आत्मा को वापस जाना है। तो चलिए, अब आपने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया, अब हम उसका अभ्यास करेंगे। और उस अभ्यास के अंतर्गत हम परमात्मा उस ज्योति स्वरूप का ध्यान करेंगे। आंखें भले खुली रहे, आंखें खुली रहे, आप उस ज्योति का ध्यान कर सकते हो, उनसे ही आप संबंध जोड़ें, तो सीधा बैठेंगे। अंतर में बहुत खुशी लाइए, बहुत खुशी कि आप किससे संबंध जोड़ने जा रहे हैं। आप जिनको ढूंढ रहे थे, अब उसको आपने पहचान लिया है। वो आपके परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं, सब संबंध उनके साथ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप निर्गुण निरंजन निराकार हैं, अजन्मा हैं, अकर्ता भोक्ता हैं, आप मुझ आत्मा के परम पिता हैं। अब परमात्मा से बातें करो, खुद को आत्मा निश्चय कर परमात्मा से संबंध जोड़ो। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य सत्ता हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रहा हूं। मुझ आत्मा ने कई शरीर रूपी वस्त्र धारण किए, कई अभिनय किए, पर मेरा वास्तविक स्वरूप एक दिव्य प्रकाश है। मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है, जहां सूर्य चंद्रमा सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा धाम है। मन और बुद्धि से वहां पहुंच जाए, एक सुनहरा लाल महतत्व जहां चारों ओर शांति ही शांति है। असीम प्रकाश ही प्रकाश है। और मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, उस परम आत्मा के सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है, और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, अनंत गुणों का सागर है। मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन आत्मा के सब रिश्ते उस परमात्मा के साथ हैं। वही मेरी छत्र छाया है, मेरा रक्षक है, मेरा सच्चा साथी है। जन्म जन्म का साथी है, जो अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा भी उनकी संतान अजर अमर अविनाशी हूँ। उनके सानिध्य में मैं आत्मा धन्य हो गई। वो शांति का सागर है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप खो जाए उस शांति के सागर में। जैसे बूंद सागर में समा जाती, एकदम शांत। शांति की शक्ति स्वयं में भर ले। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अति शुद्ध हूँ, अब इसी शक्ति को समाते हुए वापस इस साकार लोक में, इस आवाज की दुनिया में, अपने साकार शरीर में पहुंच जाए और इसी शक्ति को इंद्रियों द्वारा कर्म में लाए। हर कर्म शांत रूप में होगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हर कर्म शक्तिशाली होगा, सुखदायी होगा। और आपका ये जीवन सार्थक बन जाएगा। और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे।